हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 38-42। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनं रम्याकाचिदुपासना व्रजवधू वर्गीनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की अध्याय तीसरा स्कंद अध्याय 11 जिसका शीर्षक है परमाणु से काल की गणना। और इसमें हमने अत्यंत ही सुंदर रीति से किस तरह से परमाणु से काल को गुणा किया जाता है और उसके उपरांत कल्प के विषय में ब्रह्मा जी के समय के विषय में पढ़ा कि ब्रह्मा जी के दिन के समय संपूर्ण जगत की सृष्टि होती है, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो तीन लोक भूलोक भूलोक और स्वर्ग लोक में प्रलय हो जाती है, और मरलोक के प्राणी भी जनलोक में चले जाते हैं क्योंकि वहां तक तपस्या होती है, और जनलोक के सारे निवासी जो हैं वो भगवान की स्तुति करते हैं ताकि उन पर कृपा हो। और उसके उपरांत हमने ब्रह्मा जी के समय को किस तरह से दो भागों में बांटा गया, और अभी ब्रह्मा जी के समय की आदि आयु समाप्त हो गई, मतलब 50 वर्ष समाप्त हो गए, और आगे के 50 वर्ष जो हैं वो द्वितीयार्ध यानी दूसरा भाग जो है वो प्रारंभ हो गया है। और हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी के जीवन के जो प्रथम पहला जो आधा हिस्सा है उसके प्रारंभ में सबसे पहले ब्राह्म कल्प नाम का कल्प हुआ था जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, और ब्रह्मा कल्प के बाद पद्म कल्प कहलाता है, क्योंकि उस काल में क्या हुआ था, विश्वरूप कमल का फूल भगवान हरि के नाभि रूपी जलाशय से प्रकट हुआ था। दूसरे को पद्म कल्प कहा जाता है। और उसके बाद ब्रह्मा के जीवन के द्वितीय अर्ध के प्रथम कल्प वराह कल्प भी कहलाता है। जो फर्स्ट वाला है उसको ब्रह्मा कल्प भी कहा जाता है और वराह कल्प। क्यों? क्योंकि इस कल्प में भगवान सूकर अवतार हुए थे और भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए थे। और अब हम श्लोक नंबर 38 से आगे प्रारंभ कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ साथ इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, कालोयं द्वापरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य यनादि जगदात्मना। कालोयम, काल अर्थात नित्य काल, अयम यना यह, यह कौन, ब्रह्मा की आयु की अवधि से मापा गया। यानी ये जो काल है वो ब्रह्मा जी की आयु का द्वापरार्ध आख्या, ब्रह्मा के जीवन के दो अर्धों से मापा हुआ निमेष एक क्षण से भी कम उपचर्यते इस तरह मापा जाता है। अव्याकृतस्य यानी अपरिवर्तित रहता है उसका, अनंतस्य असीम का ही यानी निश्चय ही, अनादि आदि रहित, जगत आत्मनः यानी ब्रह्मांड की आत्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हुए कहते हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि ब्रह्मा के जीवन के दो भागों की अवधि भगवान के लिए एक निमेश यानी एक सेकंड से भी कम है, और सेकंड से भी कम के बराबर परिगणित की जाती है। भगवान अपरिवर्तनीय है तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है। यहाँ मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि हमको लगता होगा कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है, 1000 चतुर्युगी तक ब्रह्मा जी रहते हैं। 1000 चतुर्युगी तो ब्रह्मा जी के एक दिन में होती है, है ना, एक दिन में 1000 चतुर्युगी और 14 मनु बदलते हैं, और ऐसे 365 दिन का इनका एक साल होता है, और ऐसे ऐसे 100 सालों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। हम सोच सकते हैं 100 साल, और 100 साल में कितने हजार दिन होते हैं, है ना, कितने दिन होते हैं, उतनी बार हजार चतुर्युगी, उतनी बार हजार बार, है ना, सतयुग आता है, कलयुग आता है, यानी करोड़ों गुना हम सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मा जी का समय कितना बड़ा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई जा रही है वो क्या है कि वो इतनी बड़ी आयु ब्रह्मा जी की वो भगवान के निमेश के बराबर भी नहीं है। एक निमेश मतलब, निमेश का मतलब होता है जितनी देर में हम पलक झपकते हैं ना उसको निमेश बोलते हैं, और भगवान एक पलक झपकते हैं और ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है। हम सोच सकते हैं कि वो भगवान कितना विशाल होगा, कितना भगवान के लिए यहाँ पर बताए गए दो भगवान के विषय में बताई गई क्वालिटीज, भगवान क्या है, अव्याकृतस्य मतलब भगवान कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, भगवान एज इट इज रहते हैं, भगवान अनंतस्य असीम है, अनादि आदि रहित हैं, और जगत आत्मना ब्रह्मांड के कारण है। तो भगवान की यहाँ पर चार विशेषताएं बताई गई हैं कि भगवान जो है वो कभी बदलते नहीं हैं, वो ऐसे ही रहते हैं,
असीम है, उनकी सीमा नहीं है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी भी हो, लेकिन एक सीमा है ना कि 100 साल तक रहेंगे, उसके बाद उनका समापन हो जाएगा। और भगवान तो असीम है, और जो कुछ भी है, जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने नहीं देखा, जो कुछ हमने सुना, जो कुछ नहीं सुना, जो कल्पना की और जो नहीं की, उन सब के स्रोत कृष्ण है। और हमारी सबसे बड़ा हमारे अंदर जो सबसे बड़ा अवगुण है एक जीव के लिए, वो क्या है कि हम काल के अंडर में हैं। हमें एक विशेष काल दिया गया है कि इस काल के अंदर रहकर आप अपने कार्य को करो, एक सीमित समय है हमारे पास। लेकिन भगवान क्या है? भगवान वही काल है जो कि एक समय समाप्त करके हमारा सब कुछ हरण हो जाता है। जो कुछ हम इस संसार में कमाते हैं, जो कुछ इकट्ठा करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, वो सब छोड़ कर चले जाते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो बुद्धिमान है ना, उनका एक ही काम है, वो मेरी शरण में आ जाए। क्योंकि वो अगर मेरी शरण में आ जाएंगे तो मेरी किसी क्वालिटीज उनके अंदर आ जाएंगी। क्या क्वालिटी? जिस तरह से भगवान का कभी नाश नहीं होता, वैसे ही आत्मा का कभी नाश नहीं होता। लेकिन आत्मा क्योंकि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है, इसलिए अपने आप को शरीर समझती है, और शरीर को तो बारंबार नाश होना पड़ता है। वो समय जो भगवान की ही सेवा में जाता है, वो समय जो भगवान के नाम में जाता है, वो समय जो भगवान के श्रवण करने में जाता है, वो समय क्षीण नहीं होता, वो समय हमारी आयु में से कटता नहीं है, वो समय जो है वो अपरिवर्तनीय बन जाता है, सीम बन जाता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी हमको एक बात बताते हैं, वे कहते हैं कि आप भगवान के दो रूपों को सदैव याद रखो। कौन से दो रूपों को याद रखें? कोई सोच सकते हैं कि भाई राधा कृष्ण का स्वरूप याद रखना है या गौरंग महाप्रभु का स्वरूप याद रखना। नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं, यदि आपको जन्म मरण के चक्कर से छूटना है तो आप भगवान के दो स्वरूपों को याद रखो। एक तो भगवान का काल स्वरूप, कि वो कभी भी काल स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। इस संसार में यदि देखा जा सकता है ना, तो भगवान का काल स्वरूप ही देखा जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पुण्य आत्मा हो या पाप आत्मा हो, चाहे अच्छे व्यक्ति हो या खराब व्यक्ति हो, उनको एक न एक दिन काल के दर्शन तो करने पड़ते हैं। इसलिए याद रखो कि कहीं आज ही ना काल के स्वरूप में भगवान हमें दर्शन दे दे। और दूसरा कौन सा? उस काल स्वरूप से बचाने वाला भगवान का स्वरूप कौन सा? नाम रूप को याद रखो। यदि भगवान नाम के स्वरूप में सदैव मेरे साथ होंगे तो काल के स्वरूप में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो काल भी नाम यदि भेति स्वयं भयेत। भगवान का नाम जो है वो काल भी उसके सामने प्रकट नहीं हो सकता ना, भले ही काल भगवान का स्वरूप हो, लेकिन भगवान का भक्त जो है वो काल से सुरक्षित रहता है। इसलिए सदैव भगवान को दो स्वरूप में याद रखो, कि काल तो कभी भी आ सकता है, और आएगा तो मेरे पास उसका तोड़ है, और वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्रीला प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, महर्षि मैत्रेय ने काल के विभिन्न मापों का परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु की अवधि तक का पर्याप्त विवरण दिया। अब वे अनंत भगवान के काल का कुछ अनुमान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। वे उनके असीम काल का संकेत ब्रह्मा के जीवन के मानदंड द्वारा देते हैं। ब्रह्मा की पूरी आयु की गणना भगवान के काल के एक सेकंड से भी कम है और वह ब्रह्मा संहिता 5.48 में इस प्रकार बतलाई गई है। यस्यैकनिश्वसित कालमथा वलंभ्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महा स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में भगवान की विशेषता, भगवान की न समय की विशेषता किस तरह से बताई गई है। यस यही कनिष्वसित कालम अथावलंब्य, जिनका स्वांश जो महाविष्णु है, भगवान जो है वो कौन है? वो तो गोविंदम आदि पुरुषम है। लास्ट लाइन में बताया ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। लेकिन उनका एक श्वास, श्वास का मतलब होता है उनका एक अंश होता है, स्वांश, एक स्वांश होता है, एक भिन्न अंश होता है। हम जीव हैं, वो सब भगवान के भिन्न अंश हैं। और जो भगवान के विष्णु तत्व के जितने भी स्वरूप हैं वो भगवान के स्वांश हैं। और महाविष्णु जो है वो भगवान का स्वांश है। विष्णु महान स यह यस्य कला विशेषो, वो भगवान की कला है। और उनके विषय में यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं उनके एक सांस लेने पर यस्य कनिष्वसित कालमथावलंब्य, एक सांस जब वो लेते हैं जीवन तिलो ममिलजा जगदंडनाथा, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनकी एक सांस से प्रलय कर जाते हैं। एक ब्रह्मा जो है उनकी आयु सुनकर हमको हैरानी हो रही है कि इतनी बड़ी आयु, और ये भगवान जो कृष्ण है उनका एक छोटा सा स्वांश है, वो उन वो जब सांस लेता है तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उपज होते हैं, उन सारे ब्रह्मांडों का क्रिएशन होता है। और उसके अंदर एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में हजार बार चतुर्युगी होती है, और ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी की आयु और भगवान विष्णु के केवल सांस लेने के समय में वो समाप्त हो जाती है, बस खत्म। तो ऐसी महान भगवान, भगवान की हमें शरण लेनी चाहिए, यही हमें ब्रह्मा जी बताते हैं। तमहम भजामि। अनुवाद, मैं समस्त कारणों के कारण भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका स्वांश महाविष्णु है। असंख्य ब्रह्मांडों के सारे प्रधान ब्रह्मागण उनके एक श्वास में लगने वाले समय के शरण ग्रहण करके जीवित रहते हैं। निर्विशेषवादी भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करते, अतः वे भगवान के शयन करने पर विश्वास नहीं करेंगे। उनका विचार अल्प ज्ञान से उत्पन्न है। वे हर वस्तु की गणना मनुष्य की क्षमता के रूप में करते हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व सक्रिय मानव जीवन की के सर्वथा विपरीत है। अब क्योंकि अल्पज्ञानी है, उनको पता नहीं है कि भगवान हमारी कल्पना से बहुत परे हैं। हम थोड़ी ना भगवान को अपनी बुद्धि से नाप सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हर वस्तु की गणना मनुष्य की क्षमता के रूप में करते हैं। और क्या सोचते हैं कि वो भगवान है तो क्या होना चाहिए, एकदम मनुष्य से अपोजिट होना चाहिए, है ना। अगर हम मनुष्य कुछ कार्य करता है तो वैसा भगवान नहीं करता, भगवान अलग होना चाहिए ना। तो वे सोचते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व सक्रिय मानव जीवन के सर्वथा विपरीत होना चाहिए, यानी एकदम अलग होना चाहिए। चूंकि मनुष्य की इंद्रियां होती हैं, अतः भगवान की इंद्रियों की अनुभूति से वीन होगा कि अब देखो हमारा शरीर है उसी के कारण फंसते हैं ना।
कभी खाने को दिल करता है, कभी सोने को दिल करता है, कभी सुनने को दिल करता है, कभी सूंघने को दिल करता है, कभी स्पर्श की इच्छा होती है। तो भगवान तो ऐसा नहीं होगा, भगवान कैसा होगा? इंद्रियों इंद्रिय अनुभूति से विहीन होगा, उसको इंद्रियों की परेशानी नहीं होगी, यानी उसका शरीर नहीं होगा। और चूंकि मनुष्य के स्वरूप है, अतः परमात्मा स्वरूप से विहीन होगा, उनका कोई स्वरूप नहीं हो, वो निराकार होगा। और चूंकि मनुष्य सोता है, अतः सर्वोपरि को नहीं सोना चाहिए, है ना। मनुष्य सोता है तो क्या होता है? वो खोता है, खोता मतलब वो संसार की सारी बातों को भूल जाता है। लेकिन भगवान तो नहीं सोना चाहिए फिर। किंतु श्रीमद् भागवतम ऐसे निर्विशेषवादियों से सहमत नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर योग निद्रा में शयन करते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अब पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था ना कि भगवान अपनी योग निद्रा में शयन करते हैं। अगर वो शयन कर रहे हैं, मतलब उनकी आंखें भी हैं, उनका शरीर है, वो उधर लेटते हैं शेषनाग की शैया पे, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि चूंकि वे सोते हैं, अतः स्वाभाविक है कि वे सांस भी लेते हैं। ब्रह्म संहिता इसकी पुष्टि करता है कि उनके श्वास लेने की अवधि में असंख्य ब्रह्मा जन्म लेते हैं तथा मरते हैं। तो भगवान के कार्य दिव्य होते हैं, मनुष्य के जैसे नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का शरीर है ही नहीं। भगवान का शरीर है, लेकिन मनुष्य के और भगवान के शरीर में डिफरेंस क्या है? कि हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर ये शरीर है वो मांस मज्जा ब्लड हड्डियों से मिलकर बना है ना, और इसकी बहुत सुंदर पैकिंग की गई है ब्रह्मा जी के द्वारा। उसको शरीर की इसे चमड़े की पैकिंग में डाल के दे दिया। लेकिन भगवान का ऐसा शरीर नहीं है, भगवान का दिव्य शरीर है। और हमारे शरीर में कैसा है? थोड़ी सी आत्मा है, कितनी है? हृदय के अंदर बालक रे सतभागस च सतदा कल्पितस्य च, एक बाल की नोक के 10,000वें हिस्से की जितनी हमारी आत्मा है, और आत्मा हृदय में रहती है। लेकिन भगवान के शरीर में आत्मा नहीं है, भगवान तो परमात्मा है। परमात्मा मतलब भगवान का शरीर और आत्मा डिफरेंस नहीं है, वो सर से लेकर नख तक वो आत्मा ही है। आत्मा के बने हुए भगवान है। और आत्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद, और सच्चित आनंद जो है वही भगवान का स्वरूप है। तो ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है भगवान के विषय में, जो कि निर्विशेषवादी नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा है कि श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों के संरक्षण में हम हैं, और हम भगवान को इतने निकटता से समझते हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने आकर्षक हैं, भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, भगवान किस तरह से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो जब हम किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा को प्राप्त करते ना, तभी हम भगवान के को इतना निकटता से जान सकते हैं। याद रखिए भक्तों, भगवान की कृपा की अनुभूति केवल वैष्णवों के द्वारा हो सकती है। हम चाहे कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें या कितनी ही साधना कर लें, हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है या नहीं है उसका एक ही मापदंड है कि हम पर भक्तों की कितनी अनुकंपा हो रही। क्या भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्तों का संग मिल रहा है हमको? क्या उनके साथ रहकर हमको भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है या नहीं? तो भगवान के भक्त जब मिले ना, तब समझना कि भगवान की कृपा होना शुरू हो गई है। इसलिए कभी भी मौका मिस नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई शुद्ध वैष्णव के दर्शन करने का, उनसे आशीर्वाद लेने का, या उनसे उनके मुख से जब हम श्रवण करते ना, तो बहुत प्रभाव पड़ता है हमें। देखो, आप लोग सोचते होगे कि भाई हम कितने समय से भागवतम सुन रहे हैं तो भी हमारे अंदर वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं आ रहा। कारण क्या है पता है? किसी शुद्ध वैष्णव से थोड़े सुन रहे हो। भले ही श्रील प्रभुपाद जी के शब्द हैं लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में डेफिनेटली चमत्कार है। हम थोड़ा बहुत जो भक्ति कर भी रहे हैं वो उसका सारा का सारा क्रेडिट श्रील प्रभुपाद जी को जा रहा है। लेकिन यदि और तीव्रता नहीं आ रही है तो इसका कारण यही है कि शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिल रहा है। इसलिए कभी भगवान से प्रार्थना करो तो इतना ही करो कि हमें शुद्ध वैष्णवों के संग प्रदान करें। शुद्ध वैष्णव का संग लव मात्र भी हो। अभी हमने पढ़ा लव कितना छोटा होता है। लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होए। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत तथा ब्रह्म संहिता में पूर्ण मतैक्य है। नित्यकाल कभी भी ब्रह्मा के जीवन के साथ नष्ट नहीं होता, ये चलता रहता है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नियंत्रण करने की क्षमता इसमें नहीं है। ये काल जो है वो भगवान को कंट्रोल नहीं करता बल्कि भगवान इस काल को कंट्रोल करता है। आध्यात्मिक जगत में काल तो निसंदेह है किंतु कार्यकलापों पर इसका नियंत्रण नहीं होता। काल असीम है और आध्यात्मिक जगत भी असीम है क्योंकि वहाँ पर हर वस्तु परम स्तर पर विद्यमान रहती है। अब कैसे होता है काल असीम है? मतलब देखो हमारी घड़ी में भले ही 12 तक है ना लिखी है काउंटिंग, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि 12 बजने के बाद बस समय समाप्त हो जाता है, फिर रात शुरू होती है और फिर दिन शुरू होता है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के मरने के बाद समय समाप्त हो जाएगा, नहीं, वो तो घड़ी चलती रहेगी ना, समय का चक्कर तो चलता ही रहेगा ना। इसी तरह से समय चलता रहता है, ब्रह्मा जी की आयु गुजरती रहती है, हर एक दिन में 1000 चतुर्युग बीतती रहती है और एक दिन ऐसा आता है ब्रह्मा जी के 100 साल समाप्त हो जाते हैं तो प्रलय आ जाता है वो लोग और स्वर्ग लोक में, लेकिन फिर भी समय समाप्त नहीं होता है। और एक दिन ऐसा आता है जब महाप्रलय आती है, सारे जीव सारे जितने भी ब्रह्मांड हैं वो सब लय हो जाते हैं, लेकिन फिर भी समय असीम है। सब जो जीव है वो भगवान के जठर में जाकर विश्राम करते हैं और फिर बहुत समय के बाद पुनः भगवान इस जगत का निर्माण करते हैं। जब से भगवान है तब से काल है। जब से भगवान है मतलब इसका मतलब है अनादि है, कोई आदि नहीं, कोई स्टार्ट नहीं। और जब से भगवान है तब से हम भी हैं। हम सब भटक रहे हैं ना जाने कितने जन्मों से, ना जाने कितने प्रलय देख चुके हैं, ना जाने कितने सतयुगों में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुगों में भटक चुके हैं, ना जाने कितने योनियों में भटक चुके हैं। और आज फिर ये अवसर मिला है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है सत्संग। मनुष्य जीवन में सत्य का संग मिलना, भगवान की भक्ति का अवसर मिलना, भगवान के नाम जप करने का अवसर मिलना और उससे भी बड़ी बात पूर्ण शुद्ध वैष्णव गुरु का प्राप्त होना। और हमारा सौभाग्य है कि सब कुछ मिल गया, लेकिन केवल मिल जाना काफी थोड़े होता। मान लो किसी को पारस मणि मिल जाए और उसे ये कहा जाए कि देखो ये पारस मणि आपको एक हफ्ते के लिए मिली है, अब जितना इसका सदुपयोग कर सकते हो करो। और वो सोचे मार्केट में जाके बोले आज लोहे का दाम क्या है, मार्केट में बोला भाई लोहे का दाम है 200 रुपये किलो, वो बोलेगा अरे बहुत ज़्यादा महंगा है। तो मार्केट वाला बोलेगा हाँ महंगा तो है, अभी भाव चढ़ा हुआ है, तुम वेट करो ना, कुछ दिनों में हो सकता है सस्ता हो जाए।
फिर वो मंडे को भी जाए, ट्यूसडे को, वेनसडे को, थर्सडे को, इस तरह करते करते वो सोचता है शायद कल सस्ता हो जाएगा तो कल सोना बनाऊंगा, कल सस्ता हो जाएगा तो कल बनाऊंगा, और फिर इस तरह उसके सारे 7 दिन समाप्त हो जाएंगे। तो उसको वो पारस वापस देना पड़ेगा। बस यही मनुष्य जीवन भी पारस मणि की तरह है, आज मिला है और इसके द्वारा हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम यही सोचते रहें कि बहुत कठिन है, आज मंगला नहीं कर सकते, बहुत कठिन है, नाम जप नहीं होता, बहुत कठिन है, गीता का श्लोक रोज सुनना संभव नहीं है मेरे लिए, भागवत का अध्ययन नहीं कर सकता, तो हमारा भी समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, कालोयम परमार्वादिर द्विपरांधादांत ईश्वरः नैवेशितुम् प्रभुर्भूम्ना ईश्वरो धाम मानिनाम। कालोयम, कालो अर्थात काल, अयम मतलब ये, परमाणु, परमाणु मतलब परमाणु, छोटे छोटे छोटा जरा जो है, आदि मतलब उससे प्रारंभ होकर, द्विपरार्ध यानी काल के दो परम अवधियां, अंत अंत तक, ईश्वर अर्थात नियंता, नैवेशितुम न मतलब नहीं, एवम न निश्चय ही, ईशुतुम मतलब नियंत्रित करते हैं, प्रभु, प्रभु का मतलब होता है समर्थ, भूम्न यानी ब्रह्मा का, ईश्वरो धाम मानितम, ईश्वर यानी नियंता, धाम मानिनाम मतलब उनका जो देह में अभिमान रखने वाले हैं। अनुवाद देखिए, मैत्री मुनि विदुर जी से कहते हैं, कालोयम परमाणुवादिर यानी नित्य काल जो है वो निश्चित ही परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु के परार्धों तक विभिन्न आयामों का नियंता है, यानी छोटा सा परमाणु है उससे लेकर ब्रह्मा का जो दिन है, परार्ध मतलब उसके जो दो भाग हैं 50-50 साल के, उनको सबको अपने कंट्रोल में रखता है, किंतु तो भी इसका नियंत्रण नैवेशितुम प्रभु भूम्ना ईश्वरो दाम मानिना, किंतु फिर भी उसका नियंत्रण सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा होता है। वो काल जो है वो भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। काल किसका नियंत्रण करता है? काल केवल उनका नियंत्रण करता है जो सत्यलोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों तक में धाम मानिना ईश्वरो धाम मानिना, धाम मानिमा मतलब देह में अभिमान करने वाले हैं, जो अपने देह को ही सब कुछ मानते हैं, अभिमान करते हैं, एक दिन काल उनको समाप्त कर देता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो तो भगवान कहते हैं, पार्थ निश्चय पूर्वक घोषणा कर नमे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसलिए अगर हमें काल के द्वारा पराजित नहीं होना है तो एक ही तरीका है कि हमें भगवान का भक्त बनना है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विकार सहितो युक्त विशेषादि भिरावृत अंडकोशो बहिरयम् पंचाशत कोटि विस्तृत। विकार सहितो, विकार मतलब तत्वों के रूपांतर द्वारा, जो तत्व है ना 24 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेन्द्रियां, 5 महाभूत, 5 इंद्रियों के विषय मन बुद्धि अहंकार, ये 24 तत्व सहित, सहित मतलब उनके साथ,
युक्त है इस प्रकार से मिश्रित विशेष यानी अभिव्यक्तियां आदि भी यानी उनके द्वारा आवृत अर्थात पृच्छन अंडकोशो बहिरायम अंडकोश मतलब ब्रह्मांड अंडकोश बोलते हैं इस ब्रह्मांड को बहिर मतलब बाहर अयम मतलब यह पंचाशत कहते हैं हंड्रेड को पंच कहते हैं फाइव को तो पंचाशत मतलब पचास और कोटि का मतलब होता है करोड़ और विस्तृत अर्थात विस्तीर्ण यानी पचास करोड़ माइल्स तक वो फैला हुआ है जो भगवान ये ब्रह्मांड है। अनुवाद देखिए यह दृश्य जगत चार अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है जिसमें आठ भौतिक तत्वों का मिश्रण है जो सोलह अन्य कोटियों में से भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित है। अभी इनको आठ और सोलह करके चौबीस बताया जा रहा है कि ये सारे तत्व हैं जिनके मिश्रण से यह ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तुएं जो है वो बनती हैं। इस बात को श्रील प्रभुपाद जी अच्छे से समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते जैसा कि पहले कहा जा चुका है संपूर्ण भौतिक जगत 16 विविधताओं तथा 8 भौतिक तत्वों का प्रदर्शन है। भौतिक जगत का विश्लेषक अध्ययन सांख्य दर्शन का विषय है। वस्तु है 16 विविधताओं में 16 क्या है विविधताएं हैं वो क्या है 11 इंद्रियां तथा 5 इंद्रिय विषय 11 इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन और 5 इंद्रिय विषय और 8 तत्व स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ हैं जिनके नाम हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार। ये सभी परस्पर मिश्रित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं जो 4 अरब मील के व्यास में विस्तीर्ण है। ये ब्रह्मांड जो है उसका माप बता रहे श्रील प्रभुपाद जी 4 अरब मील के व्यास में विस्तीर्ण है। हमारे अनुभव वाले इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त ये तो हमको इस ब्रह्मांड के बारे में बताया जा रहा है इसके अलावा भी अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं। इनमें से कुछ तो इस ब्रह्मांड से बड़े हैं और वे सभी एक समान भौतिक तत्वों के अंतर्गत एक साथ संपुंचित रहते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया। अभी बाकी ब्रह्मांडों में क्या होता है वो भी इसी तरह से भौतिक तत्वों से बने हुए होते हैं और किस तरह से चलते हैं वो थोड़ा सा उसका वर्णन नीचे दिया जाएगा। मैत्रेय मुनि कहते हैं दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो यण्डराशय। दशोत्तरा अधिके यानी 10 गुना अधिक मोटाई वाला। अभी ये वाला कितना था जो हमने अभी पढ़ा ये 4 अरब मील का था और उससे भी दशोत्तराधिक है यानी 10 गुना बड़ा। यत्र जिसमें प्रविष्ट परमाणुवत प्रविष्ट मतलब प्रविष्ट होते हैं परमाणुवत मतलब परमाणुओं की तरह और लक्ष्यते यानी ब्रह्मांडों का भार प्रतीत होता है अंतगता एक साथ रहते हैं। कोटिशा अंतगता च अन्य च मन तथा अन्य मतलब अन्यों में भी कोटिश यानी संपुचित ही क्योंकि अंडराशय मतलब ब्रह्मांड के विशाल संयोग। मैत्रेय मुनि कहते हैं ब्रह्मांडों को ढके रखने वाले तत्वों की परतें पिछले वाले से 10 गुना अधिक मोटी होती हैं
और सारे ब्रह्मांड एक साथ संपूजित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसे प्रतीत होते हैं। मतलब ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड जो है वो छोटे छोटे परमाणुओं का विशाल समूह है, और वो जो ब्रह्मांड को ढके रखने वाले जो तत्व हैं उनकी परतें उससे 10 गुना अधिक मोटी होती हैं। अब वो कैसे होता है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मांडों के आवरण यानी कोश भी पृथ्वी जलाग्नि वायु तथा आकाश के तत्वों से बने होते हैं, और अपने से पहले वाले आवरण की उपेक्षा 10 गुना मोटे होते हैं। ब्रह्मांड का पहला आवरण पृथ्वी है और यह ब्रह्मांड से 10 गुना मोटी है। यदि ब्रह्मांड 4 अरब मील आकार का है तो पृथ्वी के आवरण का आकार 4 गुना 10 अर्थात 40 अरब मील है। जल का आवरण पृथ्वी के आवरण से 10 गुना मोटा और अग्नि का आवरण जल के आवरण से 10 गुना अधिक मोटा, वायु का आवरण अग्नि के आवरण से 10 गुना अधिक और आकाश का आवरण अग्नि से 10 गुना अधिक। यह ब्रह्मांड पदार्थ के आवरणों के भीतर आवरणों की तुलना के में परमाणु जैसा प्रतीत होता है, और ब्रह्मांडों की संख्या उन लोगों को भी ज्ञात नहीं है जो ब्रह्मांडों के आवरणों की का अनुमान लगा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की अभी जितना इसमें से समझ में आया वो हमें यही समझना है कि जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान वो असीम है, हमारी बुद्धि से बहुत परे है। बहुत सारे असीम असंख्य ब्रह्मांड हैं और उनके अंदर 24 तत्व हैं, और उनके जो आवरण हैं वो उनसे भी 10 गुना ज़्यादा मोटे हैं। पहले पृथ्वी, उसके बाद अग्नि, जल, वो सब 10-10 गुना अधिक मोटे मोटे आवरण हैं, और ये सब भगवान की इशारे पर चल रहे होते हैं। अब मैत्रेय मुनि कंक्लूजन बताते हुए, सार बताते हुए कहते हैं तदाहुरक्षरम ब्रह्म सर्वकारण कारणम विष्णुर धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मनः। तदाहुरक्षरम ब्रह्म सर्वकारण कारणम विष्णुर धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मनः। तद आहुरक्षरम, तद मन वह आहुमह कहा जाता है, अक्षरम मतलब अच्युत, ब्रह्म सर्वकारणम, ब्रह्म यानी परब्रह्म, सर्वकारण समस्त कारणों के कारणम यानी परम कारण, परम कारण, विष्णु धाम परम साक्षात, विष्णु धाम अर्थात विष्णु का आध्यात्मिक निवास, परम यानी परम साक्षात निसंदेह, पुरुषस्य महात्मना, पुरुषस्य अर्थात पुरुष अवतार का, महात्मना यानी महाविष्णु का। अनुवाद देखिए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। तदाहुर अक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम, जो समस्त कारणों के कारण है वो भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार विष्णु का आध्यात्मिक नाम निसंदेह शाश्वत है, और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। तो ये जो विष्णु का, विष्णु धाम परम साक्षात, जो विष्णु का धाम है वो क्या है? विष्णु का आध्यात्मिक धाम शाश्वत है, परम है साक्षात, और उसके साथ पुरुषस्य महात्मना, ये किसका भी है? महाविष्णु का भी धाम है, वैकुंठ धाम। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी सबको क्लियर करते हुए बता रहे हैं कि महाविष्णु जो कि कारणों में योग निद्रा में शयन करते हैं और अपनी सांस के द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं, भौतिक जगत की क्षणिक अभिव्यक्ति के लिए महत्त्व में क्षण भर के लिए ही प्रकट होते हैं। ये एक क्षण है बस। ये जो सारा ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, उनके अंदर क्रिएशन, उनके अंदर 1000 बार
चतुर्युगी होना और उसके भी 100 साल तक ऐसा कंटिन्यू होना, ये सब क्या है? ये महाविष्णु जो कारणों में योग निद्रा में शयन कर रहे हैं, अपनी श्वास के द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं, भौतिक जगतों की क्षणिक अभिव्यक्ति के लिए महतत्व में बस क्षण भर के लिए प्रकट होते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं और इस तरह भगवान कृष्ण से अभिन्न होकर वे भी भौतिक जगत में अवतार के रूप में उनका वैधानिक प्राकट्य अस्थाई है। मतलब वो भी भगवान के क्या है? स्वांश हैं, उनकी ही अभिव्यक्ति हैं और कृष्ण से ही अभिन्न है। वो कृष्ण का ही एक स्वरूप है और भौतिक जगत में अवतार के रूप में उनका वैधानिक प्राकट्य अस्थाई है, बस थोड़ी देर के, शाश्वत तौर पर भौतिक जगत में नहीं होते हैं। वो भगवान का आदि रूप वस्तुतः स्वरूप या असली रूप है और वे वैकुंठ जगत यानी विष्णु लोक में नित्य निवास करते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त महात्मनः शब्द महाविष्णु को सूचित करने के लिए आया है और उनका असली स्वरूप भगवान कृष्ण है जो परम कहलाते हैं, जिनकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते यहाँ पर बताया गया विष्णु धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मना, तो ये वास्तव में वो महात्मन कौन है? भगवान विष्णु का जो कारण दर्शाए विष्णु है उनका स्वरूप है परम, लेकिन उनके भी जो वास्तविक असली स्वरूप है ये तो केवल उनका प्राकट्य है। विष्णु महान सही है यस्य कला विशेष हो, लेकिन उनका असली रूप भगवान कृष्ण का है जो परम कहलाते हैं। और वो कौन कहता है? ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। केवल भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर है, समस्त कारणों के कारण है, अनादि आदि गोविंद, उनके उनसे आदि कोई नहीं है, वो सबके आदि है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना ही जीव मात्र का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अनुवाद, परमेश्वर अर्थात आदि भगवान कृष्ण है जो गोविंद कहलाते हैं, उनका रूप शाश्वत है, आनंदमयी है तथा ज्ञानमयी है और वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत परमाणु से काल की गणना नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुए। तो यहाँ तक हमने परमाणु से लेकर संसार के जीवों के उत्पत्ति के विषय में और ब्रह्मा की आयु के विषय में, पुनः प्रलय के विषय में, और फिर ये सब केवल भगवान की छोटी सी कला है उसके विषय में श्रवण किया। ये श्रील प्रभुपाद जी की अनुकंपा है कि इतने डीप फिलॉसफी को इन्होंने इतना सरलता से हमको बताया। यहाँ तक तीसरे स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत आभार जो मेरे जैसे कनिष्ठ व्यक्ति से आप श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हो। बस एक ही इच्छा और एक ही प्रार्थना है कि आप प्लीज़ मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और गुरु और कृष्ण को मुंह दिखाने के योग्य हो सकूं। बहुत बहुत आभार। अब यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक प्रारंभ होंगे, चार कुमारों की उत्पत्ति होगी और उसके उपरांत भगवान का एक बहुत ही सुंदर अवतार होगा, उसको हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।